अब यह कहने की आवश्यकता थी क्या, पर उनको भक्तियों का महात्म्य बताना है तो कह दिया भक्त्यात्वनन्या के अनन्य भक्ति से मिलता है अर्जुन, मैं मिलता हूं अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति के सूत्र भी बता दिए, क्या है अनन्य भक्ति, कहा कि मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु, यह अनन्य भक्ति की परिभाषा भी दे दी। अब जब ऐसी परिभाषा सुनी भक्ति के बारे में तो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परियुपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन के भीतर में वह ज्ञान का सूत्र कार्य कर रहा है, ये आप जानते हैं। अर्जुन ने ज्ञान को सन्यास के साथ जोड़ दिया है और सन्यास के प्रति उसकी एक प्रकार से वृत्ति बन गई है, क्योंकि वह युद्ध नहीं करना चाहता है। आप उस दृष्टि से अर्जुन को समझने की चेष्टा कीजिएगा। हमारे भी मन में जब एक वस्तु के प्रति आग्रह हो जाता है तो हम सतत उसको कहीं न कहीं जोड़ने की चेष्टा करते हैं। हमें कोई भी मौका लगा, मान लीजिए कि पिताजी से किसी बात में मेरी बहस हो गई, मैं एक वस्तु का एक तथ्य का एक सूत्र का पोषण करता हूं और पिताजी नहीं चाहते उस सूत्र को, बातचीत होती है, प्रकार अंतर से किसी न किसी प्रकार कभी भी मौका लगा मैं उस सूत्र को छोड़ दूंगा, माने मैं चाहूंगा कि उस सूत्र पर विश्लेषण हो या पिताजी उस सूत्र के कायल हो। तो अर्जुन भी ठीक, वह जो सन्यास का सूत्र उसने पकड़ा, उसके जीवन में जो घबराहट आई, जो भय पैदा हुआ, यह कह लें जिसके कारण उसको मरकट वैराग्य हुआ, तो इसलिए वह सन्यास की ओर बारंबार झुकता है। उसको ऐसा लगता है कि सन्यास का रास्ता ज्ञान का रास्ता, कर्म के छोड़ने का रास्ता, उससे भी जब वह तत्व मिलता है तो मैं घोर कर्म करते हुए तत्व को पाने की चेष्टा क्यों करूं, इसमें तो बहुत झमेला लगता है, इसमें तो आत्मियों का वध करना पड़ेगा। और फिर वध करना पड़ेगा अर्जुन कर तो सकता है, पर अर्जुन अपने उस डर को ठीक खुलासा करके बोल नहीं पा रहा है। बोलता है, आप पढ़ते भी यद्वा जयम यदिवानो जयो, कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे यही हमें नहीं मालूम। अर्जुन की बात को भगवान ने पकड़ लिया, अंतर्यामी है, वे जानते हैं इसमें सन्यास का कोई भाव नहीं, इसमें केवल डर घुसा हुआ है और इसीलिए ज्ञान की बात कर रहा है, और डर केवल वहीं पर ही प्रकट होता है। यद्वा जयम यदिवानो जयेयुः, कि हम यह भी नहीं जानते कृष्ण की वे जीतेंगे या हम जीतेंगे। ज्ञान की सारी बात तो कह दी अर्जुन ने कि इनको मैं कैसे मार सकता हूं, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चला सकता हूं, ये मेरे इतने पूज्य हैं, आप मुझसे कहते हैं कि मैं क्लीब हूं, मैं नपुंसक हूं, इसलिए थोड़े ही, बल्कि ये मेरे पूज्य हैं, इसलिए मैं बाण नहीं चलाना चाहता। पर भगवान ने भय को पकड़ तो लिया, अर्जुन भय को छिपाना चाहता है और वहां पर दिखाना चाहता है मैं भय के कारण नहीं बल्कि इनके प्रति अपने प्यार के कारण युद्ध नहीं करना चाहता। इतना ही प्यार था तो युद्ध भूमि में तुम आए ही क्यों, क्या नहीं मालूम था कि तुम्हें किनके साथ लड़ना है, सारी बातें मालूम थी। यह भी अर्जुन को पता था कि कौन कौन राजा उसकी तरफ से लड़ रहे हैं और कौन कौन से राजा युद्ध कौरवों का साथ दे रहे हैं, सब पता था, नहीं मालूम था। और वहां पर तो अर्जुन धनुरुद्यम, कहा गया है कि धनुष को उठा करके कहा अर्जुन ने कि युत्समाना वेक्षे हम, मैं देखना चाहता हूं उन योद्धाओं को जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए आए हैं। तू यहां तक कह रहा है युद्ध भूमि में पहुंच करके गांडीव को उठा करके, और अभी तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतना प्यार आ गया उनके प्रति, इतना स्नेह तेरे हृदय में उमर आया। भगवान कृष्ण ने ताड़ लिया, कुछ नहीं स्नेह या केवल डर है, भय है, उसे डर लगता है मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। उनकी तरफ 11 अक्षौहिणी सेना, हमारी तरफ 7 अक्षौहिणी, कैसे करके जीत होगी या नहीं होगी, एक एक धुरंधर वहां पर योद्धा दिखाई देते हैं, भीष्म पितामह ही सबसे धुरंधर, फिर द्रोणाचार्य, फिर कर्ण भी कम योद्धा नहीं है, ये सब हैं। तो अर्जुन का वह भय, तो वह भय फिर से ज्ञान के सुंदर जिसको हम कहेंगे आवरण में लपेट करके उसको रखना चाहता है। तो यहां पर वह आवरण एक सूत्र के रूप में दिखाई देता है। पूछता है अर्जुन 12वें अध्याय का पहला श्लोक, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परियुपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। बहुत चालाकी से, बड़ी दक्षता से उसने प्रश्न को रखा है। एवं सतत युक्ताय, एवं इस प्रकार से सतत युक्त आपने जो कहा भक्त्यात्वनन्या कि अनन्य भक्ति से युक्त होकर के मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संगवर्जिता निर्वैरह सर्वभूतेषु, तो एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परियुपासते। तो ये तो आपके एक भक्तों की अलग श्रेणी हो गई महाराज कि जो इस प्रकार नित्य युक्त होकर के आपका भजन करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। परियुपासते, उपासना परियुपासना, उपासना का मतलब प्रभु के पास बैठना, पास बैठना। उप आसन, उप माने नजदीक समीप, आसन माने मानो हम बैठ गए, इसका मतलब लाक्षणिक है। कोई ऐसा नहीं कि भगवान के पास आसन लेकर के बैठ गए, मानो प्रभु के पास है, प्रतीति हो रही है, ईश्वर है ही हरदम हमारे भीतर विद्यमान है, मानो उनकी विद्यमानता का बोध। और परियुपासना माने सभी प्रकार से, सभी अवस्थाओं में, सभी देश में, सभी काल में, हर समय हर क्षण मानो ईश्वर की अवस्थिति का बोध, यह परियुपासना। तो एवं सतत युक्ताय, ये जो अनन्य भक्ति की बात आपने कही और आपने कहा कि मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता ये भक्तास्त्वाम परियुपासते, ऐसे जो भक्त हैं ये आपकी उपासना करते हैं, यह एक हो गया। माने ये भक्त योग को जानने वाले हैं, माने ये योग के वेत्ता हैं, माने ये भी योग माने जिसके माध्यम से प्रभु के साथ जुड़ा जाए, वह योग युज धातु से निकला है और उसका मतलब है योग। वही अंग्रेजी में एक योग शब्द है, योग भी दो को जोड़ता है, तो यह जो योग है वह भी दो को ही जोड़ेगा, जब भी जोड़ने की क्रिया होगी दो जुड़ेंगे। तो कहता है यहां पर ये भक्ता स्वाम परियुपासते, तो भक्त भी तो योग के जानने वाले हैं। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, और फिर अक्षर और अव्यक्त इसके भी जानने वाले हैं, तो तेषाम के योग वित्तमाह, इन दोनों में बढ़िया जानकार कौन है? अब यह प्रश्न है कि बढ़िया जानकार, पहले तो अर्जुन ने पूछा था कि ठीक है कर्म श्रेष्ठ है न ज्ञान श्रेष्ठ है, और अर्जुन ने कहा भी था ज्ञायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, वहां पर ज्ञान और कर्म का झगड़ा था। यहां पर ज्ञान और भक्ति का झगड़ा वैसे नहीं है माने सामान्य दृष्टि से, पर अर्जुन यही कहता है एक तो भक्ति का जानकार है और एक ज्ञान का जानकार है, इन दोनों जानकारों में आप किसको श्रेष्ठ जानकार कहेंगे? कहीं भगवान कह दें कि ज्ञान का जानकार श्रेष्ठ है, क्योंकि तत्व तो यही है, जो ज्ञानी है जो ज्ञान का जानकार है वह तो श्रेष्ठ है ही। तो सत्य अगर भगवान भाषण करेंगे तो उनको यही कहना पड़ेगा कि जो ज्ञान योग का जानकार है वह तो श्रेष्ठ योग का जानकार है ही, वह श्रेष्ठ जानने वाला है। यदि भगवान ने तथ्य का उद्घाटन इन शब्दों में किया तो फिर अर्जुन पकड़ेगा, फिर मुझे आप ज्ञान में क्यों नहीं ले चलते, फिर आप भक्ति में क्यों लगाते हैं, और भक्ति में क्यों लगाते फिर कर्म में क्यों लगाते हैं, आप मुझे वहीं ले चलिए। आप देखते हैं ना, अर्जुन माने डाल डाल तो प्रभु भी पात पात, माने उत्तर भी देंगे तो उन्होंने घुमा फिरा करके उत्तर दिया, ऐसा नहीं कहा कि भाई कि देखो ये भक्त है वह श्रेष्ठ जानकार है, ऐसा नहीं कह सकते वे, क्योंकि ज्ञानी तो श्रेष्ठ है, ज्ञानी तो आत्मा ही वो में मतम, ज्ञानी तो उनकी आत्मा ही है, तो जो आत्मा है तो वे तो कह ही नहीं सकते कि ज्ञानी माने कम जानकार है या कनिष्ठ है जानकारी में, इस बात का उच्चारण प्रभु कर ही नहीं सकते हैं। आप तो पढ़ते हैं भगवान कह रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, जहां जनाः सुकृतिनोर्जुन, जहां पर वे कह रहे हैं कि वहां पर ये कहते हैं कि आ तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ, ये चार मेरे भक्त हैं और चार भक्तों में ज्ञानी, तो ज्ञानी के लिए क्या कहा, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, बाकी सभी भक्त हैं, आर्त भी भक्त है, अर्थार्थी भी भक्त है, जिज्ञासु भी भक्त है, ये तीनों भक्त हैं भगवान के, और ज्ञानी भी भक्त है, पर ज्ञानी को उन्होंने कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। तो भगवान तो यहां पर कह ही नहीं सकते कि भाई ये जो भक्ति का जानकार है वह श्रेष्ठ जानकार है, यह कह ही नहीं सकते, क्योंकि उससे सिद्धांत कटता है। जैसे हम पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं रामचरितमानस में कि एक बड़ी सुंदर वहां पर एक दृष्टि हमको देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जैसे सीता जी का अपहरण हो गया है, भगवान श्री राम बैठे हैं लक्ष्मण जी के साथ, वहां पर बैठे परम प्रसन्न कृपाला, उमा से भगवान शंकर कथा कह रहे हैं कि देवता देखते हैं कि अत्यंत प्रसन्न होकर के कहत अनुजन कथा रसाला, अनुज के साथ अत्यंत रसीली कथा कह रहे हैं, भगवान अत्यंत प्रसन्न बैठे हैं, यह देवताओं की दृष्टि है। भगवान शंकर कहते हैं देखो उमा वे प्रसन्न मन बैठे हैं। नारद देखते हैं कि भगवान विरहवान है, मन विरह हो गया है, विरहवंत भगवंत ही देखे। नारद मन भा सोच विसेखी, मोर श्राप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। कहां कहां राम कहां दुख भरे दिखाई देते हैं, अत्यंत प्रसन्न बैठे हैं देवताओं की दृष्टि में, अत्यंत रसीली कथा कह रहे हैं अपने भाई के साथ। और यहां पर देखा देवर्षि नारद ने कहा कहो हो कितने दुखी हैं, देखो तो मेरा श्राप अंगीकार करके यह विरह का दुख ये भी भोग रहे हैं। और नारद आए यह सोच करके वहां पर, और वार्तालाप होता है उस प्रसंग में। और आप उस प्रसंग में एक बात पढ़ते हैं, नारद जी ने पूछा अच्छा भगवान मैं उस समय जब विवाह करना चाहता था तो आपने मुझे विवाह करने क्यों नहीं दिया, यह प्रश्न है। और उसका उत्तर भगवान ने क्या दिया, उसका उत्तर जो देते हैं बड़ा गूढ़ है और ये इससे संबंधित है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। यह वे कहते हैं कि ज्ञानी क्या होता है, वह तो मेरा प्रौढ़ बेटा है। भगवान के दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। प्रौढ़ माने जिसकी मति परिपक्व है वह प्रौढ़ है। तो मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। और मेरा जो दास है अमानी भक्त है वह मेरे छोटे बेटे के समान है। तो नारद इनका मतलब यह था प्रभु का कि देखो मेरा जो बड़ा बेटा है वह तो ज्ञानी है, और जो भक्त है वह माने ज्ञानी उनका बड़ा बेटा और भक्त उनका छोटा बेटा। तो वे मानो संकेत देते हैं कि नारद तुम तो मेरे भक्त हो, अमानी भक्त हो, अपने को मेरा दास ही मानते, तुम छोटे बेटे के समान हो। क्या सूत्र देना चाहते हैं? नारद ने कहा कि मैं विवाह तब उस समय करना चाहता था, कई कारण प्रभु करण न दीना, आपने किस लिए विवाह करने नहीं दिया। तो प्रभु का संकेत यह था कि देखो बड़ा बेटा, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो भले ही वह नाही नाही करे पर जबरदस्ती घर के लोग उसका विवाह करते हैं, क्योंकि विवाह के लायक उसकी उम्र हो गई है। और अगर छोटा बेटा अपनी मां से कहे कि मेरी भी शादी कर दो, मेरा विवाह कर दो, तो क्या घर के लोग उसकी शादी करेंगे? नहीं करेंगे, वह तो छोटा है, विवाह का अर्थ ही नहीं जानता है। तो इसलिए वह कितना भी हठ करे, कितनी भी इज्जत करे, परंतु उसका विवाह घर वाले नहीं करते हैं। तो प्रभु ने संकेत दिया, नारद तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है, तुम मेरे छोटे बेटे हो, माने भक्त उनका छोटा बेटा, ज्ञानी उनका बड़ा बेटा। अब यहां पर कहते हैं तेषाम के योग वित्तमाहा, ये जो योग वित्त हैं, योग के जानने वाले हैं, एक तो भक्ति योग के जानकार, दूसरे ज्ञान योग के जानकार। अब इनमें योग वित्तम कौन है? प्रभु कैसे कहें कि ज्ञानी योग वित्तम है? कह ही नहीं सकते, कहेंगे सत्य तो यही है, पर कहेंगे तो अर्जुन फिर से पकड़ेगा, फिर रास्ते में आप ज्ञान के रास्ते मुझे ले चलिए भगवान, फिर काहे को लगाते हैं इस झंझट में। तो प्रभु जो उत्तर देते हैं जरा देखिए, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता तेमे युक्त तमामता। भगवान ने यह नहीं कहा योग वित्तम कौन है, उसका उत्तर नहीं दिया। कौन मुझसे युक्त तम माने अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, यह कहते हैं कि कौन मुझसे अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अरे ज्ञानी, ज्ञानी तो आत्म आत्म आत्मभूत ही हो गया है, प्रभु के साथ तदाकार ही हो गया है, उसके जुड़ने का प्रश्न क्या, जुड़ते कहां है, यहां पर दो अलग है, नहीं तो जोड़ होता है। तो भक्त और भगवान जुड़ते हैं, माने भक्त अलग है, उसमें अहंकार है ही, वह भक्त का अहंकार उसके भीतर है, और वह भक्त और भगवान जुड़ते हैं, ज्ञानी नहीं जुड़ता, ज्ञानी तो तदाकार होता है। तो इसीलिए यहां पर भगवान कहते हैं ते में युक्त तमामता, उन्होंने ऐसा नहीं कहा इन दोनों योग के जानकार में कौन सा जानकार श्रेष्ठ है, वे तो उत्तर देते हुए कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। देखो मय आवेश्य मनो ये माम, मन को जो मुझ में आविष्ट कर देता है, आविष्ट कर देना, हम देखते हैं कि हमारा मन किसी किसी में आविष्ट हो जाता है तो हम उसी का चिंतन करते हैं। माँ का मन आविष्ट होता है पुत्र में संतान में तो वह उसी का चिंतन करती है। तो मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, और नित्य युक्त उपासते नित्य युक्त होकर के श्रद्धया परियोपेता तेमे युक्त तमामता, ये सबसे बढ़िया मुझसे जुड़े हुए हैं अर्जुन, इनको मैं श्रेष्ठ जुड़ने वाला मानता हूं। प्रश्न क्या पूछा था कि कौन से योग का जानकार आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, कि ज्ञान योग का जानकार या भक्ति योग का जानकार? तो प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि भक्ति योग का जानकार श्रेष्ठ है या ज्ञान योग का जानकार श्रेष्ठ है। कहा कि देखो, जो लोग इस प्रकार अपने मन को मुझमें निविष्ट कर देते हैं और नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं और परम श्रद्धा लेकर के मेरी उपासना करते हैं, वे लोग श्रेष्ठ मुझसे जुड़ने वाले हैं। अर्जुन भी संतुष्ट हो गया कि भगवान ने क्या कहा। भगवान ने यही कहा कि श्रेष्ठ जुड़ने वाले ये लोग हैं। कौन? अपने मन को मुझमें आविष्ट करने वाले। अपन ने समझने की चेष्टा की और नित्य युक्त भगवान के साथ नित्य युक्त मन को नित्य युक्त कर दिया है। मानो नित्य वहां पर लगा दिया है ईश्वर में ही। माने मन में कभी भी जो वृत्ति उठती है वह ईश्वर को ही लेकर के उठती है। और श्रद्धया परियोपेता, माने अगर हम नित्य युक्त करें मन को तो कैसे करके करें? कहा श्रद्धया परया श्रद्धया, माने परा श्रद्धा से युक्त होकर के। एक श्रद्धा है जो हम संसार के लोगों के प्रति रखते हैं, और यह श्रद्धा कहते हैं उससे भी परा श्रद्धा, माने जिस श्रद्धा की तुलना ना हो, माने जो सबसे परा श्रद्धा हो, माने ईश्वर के प्रति हमारी जो श्रद्धा हो उसकी तुलना अन्य किसी के प्रति की श्रद्धा से नहीं हो सकती। या माने भगवान यह कहते हैं कि सबसे उत्तम श्रद्धा, माने और किसी का श्रद्धा का मतलब क्या है? जहां पर आदर भाव होता है और स्नेह होता है, ये दोनों साथ साथ जहां पर चलते हैं कि आदर भाव भी है और स्नेह भी है। स्नेह मानो जोड़ने वाला। आप पढ़ते हैं स्नेह का मतलब क्या है, जैसे चिकनाई, चिकनाई को स्नेह कहते हैं संस्कृत में, तो चिकनाई मानो जोड़ती है। तो यह जो स्नेह है यह ईश्वर के साथ या किसी के साथ हमें जोड़ता है। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि देखो, ऐसा जो भक्त है जिसने मन को मुझमें आविष्ट कर दिया और नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करता है, उपासना मतलब कि भगवान का ही चिंतन, हरदम मानो नित्य युक्त है, जुड़ा हुआ है, और श्रद्धया परियोपेता है और परा श्रद्धा से युक्त है, माने एकमात्र, माने मैं ही उसके लिए परम श्रद्धेय हूं। और संसार के लोग श्रद्धेय हो सकते हैं पर परम श्रद्धेय ईश्वर की तुलना में और कोई श्रद्धेय उसके लिए नहीं है, यह बात यहां पर कही गई। तो ऐसे जो लोग हैं ये लोग मुझसे श्रेष्ठ रूप से जुड़े हैं अर्जुन। और दूसरे ये तू, परंतु ये जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करने वाले, ये फिर क्या होते हैं? ये क्या मुझसे जुड़ते नहीं? भगवान का ये भी मुझे ही पाते हैं। माने बोलने का तरीका है, माने भक्ति पर जोर दे दिया और ज्ञान पर मानो कहा कि ये भी मुझे ही पाते हैं, माने ये सेकेंडरी हो गया, ये मानो आनुषंगिक हो गया। प्रथम हो गए ये भक्त, गौण हो गए ज्ञानी। माने भगवान का बोलने का तरीका यह है जिससे अर्जुन को लगे कि भक्ति वाले जो हैं क्या करते हैं, भक्ति वाले कहा कि ये तो बिल्कुल ये मैं युक्ततम है, इनको मैं युक्ततम मानता हूं, और ये जो लोग हैं ये भी मुझे ही पाते हैं अर्जुन। मामेव, जहां पर कहा ते प्राप्तवन्ति मामेव, कौन लोग? ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परियुपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। ये लोग हैं, ये मानो ज्ञान मार्ग के चलने वाले। तो ये तो अक्षरम, आप जानते हैं इसके विस्तार में नहीं जाएंगे, अक्षर वह अविनाशी, अनिर्देशम जिसका निर्देश ना हो सके। निर्देश किसका होता है? जिसके अंग होते हैं तो हम किसी के माध्यम से निर्देश करते हैं कि वह काले रंग का है, गोरे रंग का है, या किसी रंग का या रूप का। तो जिसका रूप ही ना हो तो उसका निर्देश कैसे किया जाए? जो अक्षर है माने अविनाशी है, अनिर्देश भी नहीं कर सकते। अगर वह मन का विषय होता तब तो हम उसका निर्देश भी कर सकते थे। इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, अव्यक्तम वह अव्यक्त है, मन के चिंतन के दायरे में नहीं आता है। परियुपासते वही परियुपासना, माने हर समय जो अवस्थिति का अनुभव करता है, आत्मभाव का, ब्रह्म भाव का अनुभव करता है। सर्वत्रगम, और कैसा ही है तत्व? सर्वत्र, सब काल में अनुस्यूत, सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत,
अचिंत्यम च, वही फिर से आए अचिंत्य है, माने हम मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं कर सकते। अव्यक्त का मतलब क्या है, वह इंद्रियों के गोचर नहीं होता, इसलिए वह अव्यक्त है। अचिंत्य क्यों है, मन के गोचर नहीं होता। कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, ये तीन यहां पर विशेषण दिए हैं। कूटस्थ है, अपनी जगह पर है, जैसे अपनी जगह पर है हिमालय भी तो अपनी जगह पर है, तो वह भी तो कूटस्थ है, कूट खड़ा है, वह तो हिलता नहीं है अपनी जगह से, तो वह भी क्या उसको कहेंगे कूट, अवश्य वह कूट है। परंतु यह कैसा है, अचल है। अचल का मतलब कि देखो हिमालय अपनी जगह खड़ा है, एक भाव हो गया, अचल है वह क्या हिलता डुलता है का, वह भी देखो अचल है, उस प्रकार से खड़ा है, ठीक है अचल तो है, परंतु उसके अंग टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं, उसमें चलायमानता है कि नहीं है, हिमालय के शिखर टूट करके गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। और फिर कैसा है, ध्रुवम, हिमालय एक काल में नहीं था, एक काल में पैदा हो गया, जैसे कहते हैं कि बहुत पहले वहां पर समुद्र था, हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठा, माने वह ध्रुव नहीं है, भले ही वह कूटस्थ हो पर उसमें चलाय मानता है, इसका मतलब उसके अंग टूटते हैं, प्रत्यंग टूटते हैं, उसमें क्षरण की क्रिया चली हुई है, और वह कैसा है, ध्रुवम है, वह शाश्वत है आत्मतत्व, हिमालय शाश्वत नहीं है। तो तीन बातें बता दी, वह कूटस्थ है मानो एक स्थान पर, वह कहीं मानो गड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, और अचल है, उसमें चलाय मानता नहीं है, उसके अंग नहीं है जिनका क्षरण हो, और ध्रुवम का मतलब वह शाश्वत काल से ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि एक काल में वह नहीं था और एक काल में उत्पन्न हो गया, ऐसा है। तो संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरताः। तो कहा कि संयम्य इंद्रिय ग्रामम, अपनी सब इंद्रियों का संयमन करके सर्वत्र समबुद्धयः, और सब में समान बुद्धि रखते हुए, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, और सर्वभूत के हित में रत रहने वाले ऐसे जो ज्ञानी हैं वे भी मुझे ही पाते हैं, यह भगवान ने कहा। इसका हम अर्थ कल देखने की चेष्टा करेंगे कि इंद्रिय ग्रामों पर विजय प्राप्त करना, नियंत्रण प्राप्त करना, एक समबुद्धयः सब के प्रति समान बुद्धि का रखना, और तीसरा सर्वभूत हिते रताः। तो ज्ञानी के ये विशेषण है, ठीक है कि ज्ञानी परिउपासना तो करता है अक्षर की, अनिर्देश तत्व की, अव्यक्त की, जो सर्वव्यापी है उसकी, अचिंत्य की, कूटस्थ अचल और ध्रुव है उस तत्व की, पर उसका लक्षण कैसा दिखाई देता है कि ठीक है ज्ञानी उपासना करता है, तो वैसे तो मैं भी कह लूं, आप लोग देखते होंगे शिवोहम, कुछ लोग होते हैं शिवोहम ऐसा कहते हैं, सोहम वो साधना पद्धति ही है, सोहम और आपने थोड़ा सा कुछ मन के विपरीत कर दिया तो गाली भी देते हैं। अब ये सोहम का क्या मतलब है कि तुम सोहम भी कहते हो और तुमको गाली चुभती भी है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि देखो बहुत लोग अद्वैतवाद की बात करते हैं, शिवोहम सोहम कहते हैं, और कांटा अगर पैर में चुभ जाए तो सी भी करते हैं। ये कैसी बात है कि तुम सी भी करोगे और शिवोहम भी कहोगे, तो यह तो दोनों बातें बनती नहीं है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि कैसा है यह ज्ञानी, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, फिर कैसा है उसकी सर्वत्र समबुद्धि है, सभी ओर समान रूप से देखता है, कैसे देखता है उस पर कल चर्चा करेंगे, और कैसा है सर्वभूत हिते रताः, सबके हित के में रत रहता है। क्या मतलब कि सबके हित के लिए माने काम करता है, कैसे करता है, तो यह देखें, ते प्राप्तवन्ति मामेव, ऐसे जो हैं इस ज्ञान मार्ग के अवलंबी वे भी मुझे ही पाते हैं अर्जुन। फिर उसके बाद कह देंगे कि अर्जुन का मन इधर न चले कि जब वे भी पाते हैं तब मुझे उसी रास्ते से ले चलिए ना। आपने कहा कि ये भक्त लोग हैं, वे लोग श्रेष्ठ जुड़ने वाले हैं, और ज्ञानी भी जब आपको पाता ही है तो आप मुझे उस रास्ते से ले चलिए ना। तो भगवान कहते हैं क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद फिर वाप्यते, कि देखो भाई उस रास्ते में कठिनाई बहुत है। ये जो देह बोध वाले लोग हैं कि मैं शरीर हूं, ऐसी जहां तक जब तक प्रतीति है, इस ज्ञान के रास्ते में चलना बहुत क्लेशकर है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवजो वदंती, बड़ा कठिन रास्ता है। श्री रामकृष्ण का वही कथन फिर से दोहरा दें, कांटा चुभने से मुख से अगर सीतकार निकलता है तो फिर कहा देहबोध तो बना ही हुआ है, उस रास्ते पर बहुत कठिनाई से चला जाता है। तो भगवान अर्जुन को समझाने की चेष्टा करते हैं और भक्ति के तत्व को बताने की यहाँ पर उनकी चेष्टा है। तो यह हम लोग कल देखेंगे, आज यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।